नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता में उन्नत तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभुकों के बीच 1,247 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। गंगा, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, घाघरा और कोसी समेत प्रदेश की विभिन्न नदियां खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ से 13 जिलों में 10 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। और एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में हांगकांग और महिला वर्ग में चीन ने खिताब पर कब्जा जमाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी उन्नत तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की ताकत है। श्री मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दिखाने के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की नई ताकत को अच्छी तरह पहचानती है।
साथियों, आज ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता, पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि साफ नियत और सरकार की ईमानदार कोशिश से भारत आज प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त कर रहा है।
पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली। ये स्पीड हमें साफ नियत और ईमानदार प्रयासों से मिली। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया।
श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया का 50% से अधिक लेनदेन भारत में यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में डिजिटल तकनीक का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
आप देखिए, आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। यूपीआई के जरिए दुनिया का 50% से ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। आज देश में 2200 से ज्यादा सरकारी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध है। हमारा प्रयास है कि देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के 9 दिनों बाद भी राजनीतिक दलों से अब तक कोई दावा आपत्ति नहीं मिली है। आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं का नाम 1 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप में शामिल नहीं है, वे 1 सितंबर तक दावा आपत्ति के लिए आवेदन दे सकते हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है। श्री सिंह ने आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को पहले सूची में गड़बड़ी का सबूत देना चाहिए।
राहुल गांधी तो लगता है कि न संविधान का ज्ञान है। संविधान को तो मानिए, क्या आप कहना चाहते हैं? सीधा सीधी बोलिए ना कि हमको बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट चाहिए। सूची देंगे नहीं, थेथोलॉजी करेंगे। ये सोचते हैं कि हम बोलते रहेंगे झूठ, वो सच हो जाएगा। झूठ झूठ ही होगा।
राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर 2 अलग अलग इपिक नंबर रखने का आरोप लगाया है। श्री यादव ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उप मुख्यमंत्री का इपिक नंबर लखीसराय विधानसभा के साथ बाकीपुर पटना में भी दर्ज है।
ये वोटर लिस्ट जो अभी एसआईआर ड्राइव में जो हुआ है, वो एसआईआर के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, इनका दो ईपीआईसी नंबर है, वो भी दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घुटाला भी है और फर्जीवाला।
इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी प्रसाद यादव के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि वे वर्ष 2024 में ही लखीसराय में नाम जुड़वाने और बांकीपुर से नाम हटाने का आवेदन दे चुके हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव जानबूझकर गलत तथ्यों से संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल कर रहे हैं।
हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था, पटना में जब कदम कुआं में रहते थे। हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहां पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है, किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहां भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी प्रसाद यादव के आरोप पर कहा कि चुनाव आयोग इन्हीं गलतियों को ठीक करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है। श्री पासवान ने विपक्षी दलों पर संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को समाप्त करने का आरोप लगाया।
पहली बात तो आरोप कौन लगा रहा है? यही चीज आज से चार दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास दो नंबर हैं, तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें, वो क्या करें, लीपापोत। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना, अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। हकीकत ये है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,12,00,000 से अधिक लाभुकों के खातों में DBT के माध्यम से 1,247 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1,100 रुपए की पेंशन राशि अंतरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जून महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को हर माह मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। इससे इस योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी शामिल थे। एशिया रग्बी के अंडर-20 के पुरुष वर्ग के खिताबी टक्कर में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमा लिया है। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में अब से थोड़ी देर पहले खेले गए फाइनल में हांगकांग ने एकतरफा मुकाबले में श्रीलंका को 33-0 से हराया। वहीं महिला वर्ग के फाइनल में चीन ने हांगकांग को हराया। इधर भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को हराकर तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया। भूमिका शुक्ला के नेतृत्व वाली भारतीय महिला टीम ने कांटे की टक्कर में 5 के मुकाबले 12 अंकों से उज्बेक टीम को हराया। वहीं पुरुष वर्ग में मलेशिया ने चीन को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इससे पहले पुरुषों के मुकाबले में भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को पराजित कर 5वां स्थान प्राप्त किया। मॉनसून की सक्रियता से राज्य के अधिकतर भागों में मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार, शेखपुरा और नालंदा जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं राज्य के शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा एवं राज्य के उत्तरी भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की भी संभावना है। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व भागों के अधिकांश स्थानों, उत्तर मध्य भाग के अनेक स्थानों एवं दक्षिण बिहार के जिलों के कुछ स्थानों में होने की प्रबल संभावना है।
इधर विभिन्न नदियों में भारी उफान के कारण पटना, भोजपुर, कटिहार और शेखपुरा समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ से 13 जिलों में 10 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। गंगा नदी में उफान से पटना जिले के दियारा इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दानापुर के पुरानी पानापुर, कासिमचक, हेतनपुर, गंगहारा, पतलापुर, मानस और अकीलपुर पंचायत के विभिन्न गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM से जानकारी ली और प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने को कहा। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा और कोसी समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि से 20 से अधिक पंचायतों की आबादी प्रभावित हुई है।
कटिहार जिले में गंगा, कोसी, बरंदी और कारी कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि से कुर्सेला, बरारी, मनसाही, मनिहारी, अहमदाबाद और प्राणपुर अंचलों की 28 पंचायतों की आबादी प्रभावित हुई है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में 53 नाव चलाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक 591 लोगों का इलाज किया जा चुका है। प्रभावित अंचलों के 30 आंगनबाड़ी केंद्रों और 49 स्कूलों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी।
भोजपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान, चिकित्सा सेवाएं, राहत सामग्री वितरण और निशुल्क नाव का संचालन किया जा रहा है। वहीं बड़ाहरा अंचल के नेकनाम टोला बांध पर बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच पॉलिथीन शीट का वितरण किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए भोजपुर से मुकेश कुमार सिन्हा।
शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से घाटक कुसुम्भा प्रखंड के विभिन्न गांवों में आवागमन ठप हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में नाव का संचालन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड से गुजरने वाली गंगा की सहायक हरोहर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रखंड क्षेत्र के पानापुर, जितवारपुर, प्राणपुर और आलापुर गांव में बाढ़ से आवागमन ठप है। जिला प्रशासन की ओर से 7 नावों का संचालन किया जा रहा है। ADM लखिंद्र पासवान ने आज बाढ़ प्रभावित घाट कुसुम्भा प्रखंड का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलंत वाहन द्वारा लोगों को दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
इधर बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में अलग अलग स्थानों में बाढ़ के पानी में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने जहानाबाद जिले के शकुराबाद इलाके में एक छात्रा को उसके आवासीय विद्यालय के रसोई से खाना मांगने पर गर्म करछुल से दागने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने जहानाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने घायल छात्रा की स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट भी देने को कहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता में उन्नत तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभुकों के बीच 1,247 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। गंगा, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, खागरा और कोसी समेत प्रदेश की विभिन्न नदियां खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ से 13 जिलों में 10 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। और एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को हराकर 3रा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में हांगकांग और महिला वर्ग में चीन ने खिताब पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।